ओम शांति। कल की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। बहुत बहुत समय पहले एक शिष्य था जो कि अपने ज़ेन गुरु के पास गया और कई वर्ष तक वहां रहा, परंतु वो ज़ेन गुरु उसको कभी सिखाते नहीं थे। वो कहता था, मुझे कुछ सिखाओ, मुझे कुछ बताओ, कुछ शिक्षाएं दो, कुछ लेक्चर, कुछ प्रवचन, कुछ डिस्कोर्स, कुछ तो बताओ। मैं कब से यहाँ हूँ, कब से यहाँ पर अध्यात्म का प्रकाश ज्ञान लेने आया हूँ, परंतु आप ऐसे हो कि मुझे कुछ सिखाते ही नहीं। तो वो गुरु कहता है, मैं जो करता हूँ वो तुम करो, मैं जो बोलता हूँ वैसा तुम बोलो। वो कहता है, नहीं, ये तो मैं कब से सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर मुझे आप कुछ शिक्षा दो। मैं यहाँ शिक्षा लेने आया हूँ इस गुरुकुल में, इस आश्रम में। जब तक आप मुझे कुछ शिक्षा नहीं दोगे मैं सीखूंगा कैसे, क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है। तो गुरु कहता है, तू ऐसा कर। गुरु, जैन धर्म में ऐसा है कि उनमें परंपरा है कि यदि शिष्य सामने से इच्छा प्रकट करे तो गुरु उसे किसी और दूसरे गुरु के पास या किसी स्थान पर भेज सकता है उसकी इच्छा से। तो वो कहता है कि बाजू में ही एक धर्मशाला है, एक सराय है, वहां पर जाओ। जो धर्मशाला का मालिक है, जो सराय का मालिक है, वो तुमको सिखाएगा, चाहे कहे या अनकहे। 24 घंटे तुम्हें वहीं रहना है। तो शिष्य सोचता है, अब क्या करें, यहां तो वैसे भी कुछ सिखाता नहीं है गुरु, तो चलो सराय में जाते हैं। तो सराय में जाता है, 24 घंटा रुकता है, वहां देखता है, वहां पर ऐसे अटपटे लोग आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रुक रहा है, कोई चाय पी रहा है, अलग अलग चीजें वहां पर हो रही है। वो कहता है, यहां मैं क्या सीखूंगा और इस मालिक से क्या सीखूंगा। तो देखता है कि वो जो मालिक होता है, और वहां बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, सामान होते हैं, उन सभी को पोछते रहता है थोड़े थोड़े देर में, कपड़े से साफ करते रहता है। अभी साफ किया, 10-15 मिनट बाद फिर साफ करने लगता है, फिर साफ किया, फिर बर्तन साफ करेगा, छत साफ करेगा, आईना साफ करेगा, टेबल साफ करेगा, चालू ही रहता है। तो वो सोचता है, इससे मैं क्या सीखूं, ये तो पागल मालूम होता है, ये सुबह से लेकर रात तक सफाई करते रहता है और कुछ करता ही नहीं है, इससे मैं क्या सीखूंगा। रात को 11 बज जाते हैं तब भी वो देखता है वो साफ ही कर रहा है, और फिर सुबह सुबह, फिर भी शिष्य को तो रुकना होता है 24 घंटे, तो सुबह सुबह 5 बज जाते हैं और देखता है कि ये जो मालिक है घर का फिर से सफाई में चालू हो गया है। तो वो उसको पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। वो कहता है, मैं सफाई कर रहा हूं। बोले, कब तक सफाई करोगे, रात अभी तो 11 बजे तक सफाई कर रहे थे, अभी 5 बजे उठ के फिर सफाई चालू कर दिया। वो कहता है, हाँ, चीजें अगर वैसी ही रखी रही, केवल रखी भी रही तो भी सफाई करनी पड़ती है, केवल रखना मात्र भी धूल जमा हो जाती है, इसके लिए मैं सफाई ही करते रहता हूं। शिष्य लौट कर वापस आता है। गुरु कहता है, क्या सीखा। वो कहता है, कुछ नहीं सीखा, वो तो खाली सफाई करता रहता है। कब करता है, दिन भर सफाई करते रहता है। गुरु कहता है, अरे ना समझ, यही तो तुमको करना है, मन में जो विचार है वही धूल है। मन कुछ न कर रहा और केवल स्वप्न देख रहा और केवल सोच रहा है, वो सोचना भी धूल है। इसीलिए अपने मन रूपी बर्तन की, अपने मन रूपी दर्पण की निरंतर क्या करते रहो, सफाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ न भी किया सारे दिन भर, परंतु विचार आए और चले गए, वो एक एक संकल्प कुछ कुछ छोड़कर गया है, विचार ही धूल है, उसकी चेकिंग करते रहो। कल की अव्यक्तवाणी। बाबा ने कहा, अपने दिल दर्पण में क्या करते रहो, कैसे चेकिंग करते रहो, बारंबार शब्द प्रयोग किया बाबा ने, अपने दिल दर्पण में क्या करते रहो, बारंबार चेकिंग करते रहो। क्या चेकिंग करते रहो, कि खजाने कितने जमा किए हैं आज बाप दादा। स्वयं को क्या टाइटल दिया है बाबा ने, सर्व खजानों के मालिक है वो। कौन से बच्चों को देख रहे हैं, जो सर्व खजानों से संपन्न बच्चे हैं उनको देख रहे। एक जगह आप कहा कि जो संपन्न खजानों से संपन्न बच्चे, ऐसे बच्चों को देख रहे। नीचे एक जगह कहा, समय प्रमाण, बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे खजानों से संपन्न बने। पहले कहा कि उन बच्चों को देख रहे जो खजानों से संपन्न है, नीचे कहा बाप दादा चाहते हैं समय प्रमाण कि सभी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न बने। तो क्या करना है या बन रहे हैं? पर सब पहले बोला कि सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे, देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं, है भी और बन भी रहे हैं। उत्तर बाबा का क्या है? भी और बन भी रहे हैं। है इसलिए क्योंकि ये है विधि है बनने की। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? मैं हूं, बनने वाला हूं नहीं, हूं अभी हूं। ये हूं जो है, ये पॉजिटिविटी जो है, ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इसको कहा जाता है। कल कहा ना बाबा से अपने आप से ही बात करो, विचार सागर मंथन करो और अपने आप से ही बात करो, बैठो और अपने आप से ही बात करो, बैठो और देखो बाप ने सबको समान खजाने दिए हैं, परंतु सबके पास अलग अलग है। क्यों? क्या कारण है? खजाने 1000 रुपए है, यहां 3 गड्ढियां रखी हुई है, गड्ढिया 1 2 3, तीन लोगों ने 1000 रुपए लिए, परंतु सबके पास अलग अलग क्यों? क्या कारण है? क्या कारण हो सकते? तीन लोग हैं अबा का, तीनों ने, तीनों को 1000 रुपए दिया गया, परंतु मिले सबको, बच्चे सबके पास अलग अलग क्यों? किस इसने ये आ ने बहुत खर्चा कर दिया, बा ने क्या कर दिया, उसने किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी ने इन्वेस्ट किया और बढ़ा लिया। जैसे वो कहानी है ना, एक पिता है, वो 3-4 साल बाहर जा रहे हैं तो बीज देके जाता है अपने 3 बेटों को, कहता है यही बीज मैं लूंगा 3 साल के बाद, सफल करो इनको, जो करना है करो। पहला सोचता है पिता आएंगे तब तक ये बीज तो रहेंगे नहीं, अभी बेच देता हूं, जब आएगा उसके पहले खरीद लूंगा। एक दूसरा सोचता है, ये पिताजी ने कहा है कि यही बीज दूंगा, इसको अच्छे से पैकिंग करके अंदर रख देता हूं। तीसरा सोचता है घर के बाहर पीछे इतना बड़ी जमीन खाली पड़ी है, क्या करूं, बो देता है। तो पिता जब आते हैं तो पहला क्या करता है, खरीद कर बीज ला के देता है, जो कुछ काम के नहीं है अभी। पहला दूसरा वैसे के वैसे बीज लेके आता है, बीज खराब हो चुके हैं, और तीसरा लहलहाती फसल। तो क्या कर दिया तीसरे ने, खजाने का बढ़ा दिया। बाप दादा ने सर्व खजाने सर्व बच्चों को दिए हैं, फिर भी सबके पास अलग अलग खजाने हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने खजानों को क्या कर दिया, किसी के चोरी हो गए, लूट गए, किसी ने संभाल नहीं की, लापरवाह बेपरवाह हो गए, गफलत में थे और खजाने कोई लूट कर लेके गया, और फिर अभी कंगाल बन बैठे हैं, कोई खजाने नहीं। बैंक्रप्सी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, स्पिरिचुअल पावर्टी में है अभी, ऐसी आध्यात्मिक गरीबी आ गई है। और तीसरा जो था उसने क्या किया, सफल किया। कैसे सफल करना? कल की अव्यक्त, कल की साकार मुरली, सुबह की महावाक्य क्या थे, मीठे बच्चे, 1-2 की पालना कैसे करो, ज्ञान रत्न बांटो और 1-2 की पालना करो। तो खजानों को बढ़ाना है, खजानों को बांटना है तो बढ़ेंगे। ये खजानों की विशेषता, आशीष भाई क्या क्या विशेषता है, कहां इस खजानों की विशेषता? ये अविनाशी खजाने है, ये खजाने बांटने से बढ़ते हैं, यहाँ का स्टेटिस्टिक्स ही अलग है। ये खजाने कोई लूट नहीं सकता, ये खजाने कोई डाका नहीं डाल सकता, ये खजाने यदि कोई लूट भी ले तो वो भी खजाने से संपन्न हो जाएगा पूरा ही, उतना ही, और हमारा खजाना कम भी नहीं होगा, खुद लुटाओ। ये खजाने अदृश्य है, ये खजाने अविनाशी हो गया, ये खजाने केवल संगम युग पर मिलते हैं, और किसी युग में ये खजाने नहीं मिलते। ये खजाने, ये रिचेस, ये प्रॉपर्टी, ये स्टेट, ये संपत्ति, ये धन, ये अनेक जन्मों तक चलता है, वो अविनाशी में आ गया। ये खजाने जमा, ये खजाने सूक्ष्म है, अदृश्य है, ये खजाने जिसके पास होगा उसकी निशानियां इस मुरली में बाबा ने सुनाई है, उसके चेहरे और चलन से क्या होगा, खुशी होगी, रूहानी फकूर, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चमक होगी, बेफिक्र बादशाह होंगे। जिसके पास ये खजाने हैं, चेहरा चलन बेफिक्र बादशाह, स्वप्न में भी कोई फिक्र नहीं, और जो हो रहा है कोई चिंता नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, जो होगा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छे थे अच्छा, ऐसा रूहानी फकूर, रूहानी नशा, ऐसी बेफिक्र बादशाह की अवस्था, स्वप्न में भी फिकर नहीं, ऐसी अपने दिल दर्पण में चेकिंग करो, खजाने कितने जमा किए हैं। बाबा ने सब दे दिए, मैंने कितने जमा किए, और इस खजानों की विशेषता, ये खजाना किसी भी समय कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। वो खजाना लेके जा सकते हो क्या, 1,00,000 रुपए? हाथ में कैश रहती है क्या? डर रहेगा, फियर रहेगा, एंजाइटी रहती है क्या? इस अगर ये खजाना हमारे पास ज्यादा है तो डर रहेगा इनकम टैक्स का? इस खजाने में कोई डर नहीं है, इस खजाने में कोई चिंता नहीं है, इस खजाने में कोई फिक्र नहीं है। कोई चोर लेके जा ही नहीं सकता, अगर जाए भी लेके तो उसका भी कल्याण है। ये खजाने जल नहीं सकते, ये खजाने सूख नहीं सकते, ये खजाने फाड़े नहीं जा सकते हैं, नष्ट नहीं किए जा सकते, ये खजाने डिलीट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे ये खजाने, और इस खजाने की विशेषता, उसको प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं से कोई नुकसान नहीं हो गया। और वायुमंडल क्या क्या वो तो बोल दिया बाबा ने। और ये बैंक की कोई टाइमिंग नहीं है, आपने टाइमिंग के बारे में बताया नहीं बैंक में। अच्छा, तो बाप ने सबको खजाने दिए हैं, सबने फिर भी अलग अलग लिए। ये खजाने जिसके पास है उसको कोई फिक्र नहीं, वो खजाने जिसके पास है उसको रूहानी नशा रहेगा। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा, दिल दर्पण में चेक करो खजाने कितने जमा किए हैं। एक, फिर तीन प्रकार के खाते, कौन कौन से तीन खाते? पहला स्वपुरुषार्थ का खाता, स्वपुरुषार्थ का खाता कितना जमा किया है। दूसरा खाता पुण्य का, पुण्य कैसे जमा करेंगे? निस्वार्थ भाव, भावना, बेहद का भाव, भावना, वृत्ति, बेहद और निस्वार्थ, ये दो भाव और भावना वृत्ति ऐसी ऊंची होगी तो कहीं जाके ये क्या जमा होगा, पुण्य जमा होगा। और दुआएं कैसे जमा होगी, संतुष्टता से, संकल्प बोल और कर्म सब में, संबंध संपर्क सब में संतुष्टता, स्वयं हम दूसरों से संतुष्ट, दूसरे हमसे संतुष्ट। तो ये तीन खाते जमा होंगे, इन तीन खातों की चेकिंग करो कितने जमा किए हैं। तो पहले खजाने बताएं, फिर खाते बताएं, और उसके बाद में एक शब्द, एक शब्द क्या क्या कर देता है, अलबेला बना देता है। एक शब्द क्या करता है, बंधन डालता है पुरुषार्थ में। एक शब्द क्या करता है, निवारण नहीं होने देता। वो एक शब्द तैयार हो सुनने के लिए, कितनी बार पूछा, फोटो लो, टीवी में दिखाओ, हाथ खड़ा करो, हिम्मत है, एक शब्द, कौन सा शब्द है वो, कारण, इसको क्या कर दो, निवारण। और इस कारण शब्द के बहुत तीन साथी है, ऐसे वैसे कैसे, तो क्या करना है अभी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। एक है, एक बहुत सुंदर महावाक्य मुरली में आया है, कारण सामने लाने से या कारण सामने रखने से निवारण नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये जो मुरली है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कैसे प्रॉब्लम जीवन में जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ये करने से कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है। हमारे पास साधन नहीं है, साधन नहीं है, साधन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सिक्स थिंकिंग हैड्स अप्रोच यहां आएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कारण को निवारण करो, कारण का निवारण करो, कारण शब्द को परिवर्तन कर दो। इसमें हिम्मत चाहिए, इसमें साहस चाहिए, इसके लिए तैयारी चाहिए, ऐसी है। अगर है तो फिर वो बंधन नहीं रहेगा, अलबेले नहीं बनेंगे और निवारण हो जाएगा। तो क्या किया जाए जीवन में, समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न, परिस्थिति है तो उसको, उस कारण को निवारण कैसे करें, क्या विधि होगी। बहुत सारी टेक्निक्स इसके विषय में दी हुई है, बहुत सारी अलग अलग जगह पे। बाबा ने कहा है कि उसका इस रूप में चिंतन नहीं करो कि ये कारण है, कारण कारण कारण, इस कारण से ये हुआ, उस कारण से ये हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये कारण थे। वो जो था लेटर टू गार्सिया, वो जो गार्सिया था जिसको ये काम दिया गया था कि जाओ, वो रोवन को जो काम दिया था, वो जो सिपाही था, कि ये लेटर गार्सिया को दे दो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा। गार्सिया ने ये नहीं पूछा कहां देना है, कब देना है, किसको देना है, किस जंगल में जाऊं। उतर गया, कुबा के आइलैंड में गया और वहां पर ढूंढता रहा ढूंढता रहा, और लेटर पहुंचा के आया। जिस लेखक ने ये कहानी लिखी है, लेटर टू गार्सिया, हजारों सारी विश्व भर की जो कंपनियां उसमें सुनाई जाती है कि जब कोई ऑफिस बॉस तुम्हारा तुमको काम दे, उसको करना, ये नहीं पूछना कि ये ऐसा कारण है वैसा कारण है इसलिए मैं नहीं कर पाया। वो जो रोवन था, उसने पूछा नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि क्या करूं कैसे करूं। अमेरिकन स्पेन जो वॉर था उस टाइम पे, वो लेटर देना बहुत जरूरी था। लेटर टू गार्सिया, वो पहुंचा के आया। तो कारण नहीं देना कि ये कारण था, एक्सक्यूजेस, कारण, प्रिटेक्स्ट, लेम एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी, ये सारे स्टॉप। तो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में बताया जाता है, सबसे पहली विधि है जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करो, क्लियर द प्रॉब्लम, अर्थात उसको देखो व्हाइट हैट। व्हाइट हैट अर्थात फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, उसके संबंधित मुझे क्या क्या पता है। जैसे एक समस्या है, उस संबंध में सारी जानकारी पहले सामने हो, सारे फैक्ट्स फिगर्स, सेपरेट फिक्शन फ्रॉम फैक्ट्स, जो इमेजिनेशन है उसको हटाओ और फैक्ट्स जो है, तथ्य जो है, तथ्यों को सामने रखो। ये तथ्य है, अभी इसको मुझे सॉल्व करना है। चिल्लाते नहीं बैठना है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कारण कारण कारण, उससे निवारण नहीं होगा। उस शब्द को ही खत्म कर दो बाबा ने कहा, यह शब्द खतरनाक शब्द है। तो पहले तो क्लियर करो सारी इंफॉर्मेशन, एक दूसरे दूसरा, फिर उसके बाद में थिंक ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन से विकल्प है, क्या क्या किया जा सकता है। डिफिकल्टीज के बारे में सोचो, रेड ब्लैक हैट, क्या समस्याएं आ सकती है, क्या मुश्किलें आ सकती है इसमें, वो सोचो। पॉजिटिव फीचर्स देखो उसके, इमोशंस देखो, येलो हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, सारी एक 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 चीजें उसको, उसका विस्तार करो, देखो फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या, किस रीति से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डिस्कशन करो, राय लो, सजेशन लो, फिर प्लानिंग करो, प्लानिंग करो उसको, ये करेंगे। अच्छा, प्लानिंग करने के बाद, इतने दिन की प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग का चेकिंग 7 दिन के बाद। जैसे किसी को एक आदत से छूटना है, कोई संस्कार है, कड़ा संस्कार है, छूट नहीं रहा है, समस्या है वो, तो वो कहने से नहीं होगा कि ये मेरा जाता नहीं जाता नहीं जाता नहीं। किसी को दुखी होने का संस्कार है, उदास होने का संस्कार है, प्लानिंग, क्यों उदास हो रहा हूं, क्या कारण है, क्यों रोना आता है, क्यों डिप्रेशन है, समस्या क्या है, मृत्यु हो गई है स्वजनों की, क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्लीन माइंड से, प्लेन इंटेलेक्ट से बैठकर। प्लानिंग की, प्लानिंग के बारे में एग्जीक्यूशन, ब्लू हैट, एक्शन प्लान, एक्शन लिया, उसके बाद में फिर उसको एनालिसिस, उसकी चेकिंग, कहां गड़बड़ हुई, कहां गलती हुई, और उसके बाद में नेक्स्ट प्लानिंग, उसके बाद में फिर राय लो, फिर इस तरह से। इसकी बहुत अलग अलग विधियां हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम है उसका क्या करें, कुछ ना तो कुछ करना है उसके साथ, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है उसको। और हर एक को ये, कोई भी प्रॉब्लम, करियर हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुरुषार्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनीथिंग, उस प्रॉब्लम को क्लियर करना है और फिर सॉल्व करना है। और सबसे मुख्य चीज यहां पर जो कल की मुरली में था, खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, इसको कहा जाता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसमें भी बहुत अलग अलग चीजें लोगों ने विस्तार किया है इसके ऊपर, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा जो अंदर जो चल रहा है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव चैटर चालू है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, उसमें हजारों विधियां है, एक विधि है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, स्वयं को अलग कर देना खुद से। जैसे जेन मास्टर था बोकाजो, वो क्या करता था, अपनी एक गुफा में अकेला रहता था, उसके शिष्य थे, तो अकेला रहते थे, आधी रात को बीच में चिल्लाता बोकाजो बोकाजो बोकाजो, शिष्य आके कहते थे क्या हुआ क्या हुआ, वो कहते थे कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। और थोड़ी देर में आवाज आती है, हाँ महोदय मैं उपस्थित हूं, वो कहते हैं आप खुद ही अपना नाम लेते हो और फिर थोड़ी देर में कहते हो कि मैं हाजिर हूं, ये क्या है? वो कहता है कि मैं विचार करते करते कभी कभी इतना खो जाता हूं कि यही भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपने आप को चिल्लाता हूं बोकाजो बोकाजो बोकाजो। और फिर ये जागरण की विधि है, अपने आप से मैं बात करता हूं और फिर थोड़ी देर में कहते हाँ मैं हाजिर हूं। तो ये कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। और वो जब मरने के करीब था आखिरी एक दो साल, तब उसने कहना बंद कर दिया। शिष्य पूछते थे अब आप नहीं चिल्लाते? वो कहता है अब निरंतर जागते रहता हूं। तो यहां पर विधि है अपना जो नाम है उस नाम से स्वयं से बात करना और डिस्टेंस करना खुद को। जैसे कमलेश भाई, तो कमलेश भाई अपने आप से कैसे बात करेंगे? अरे कमलेश भाई तुम क्या कर रहे हो? खुद ही से बात करना जैसे कोई दूसरा पूछ रहा है। तुमने आज सुबह ही तो भाषण दिया था इस पर और अब खुद ही क्या कर रहे हो? तो खुद से खुद का नाम लेकर साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कर देना और बात करना, दिस इज नोन एज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद ही ऐसा कि मैं वो नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, जैसे बोकाजो 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 चिल्लाता है वो और कहते हाँ मैं हाजिर हूं। मतलब हम हाजिर हो जाएंगे फिर, दिस विल ब्रिंग अबाउट अवेकनिंग। कि नहीं तो हम सोए सोए जीते हैं, सोए सोए सोचते रहते हैं, चालू है चैटर, सेल्फ टॉक निगेटिव चैटर चालू है, नॉन स्टॉप चालू है, फियर एंग्जाइटी समाया हुआ है उसमें। तो उसको ब्रेक करने के लिए जोर से चिल्लाना खुद का नाम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कारण को निवारण करो, कारण शब्दों को हटाओ। ये बंधन है पुरुषार्थ में, ये अलबेलापन लाता है और निवारण नहीं होने देता। और उसके जो साथी ऐसे वैसे ये सब को भी हटाओ। तो ये एक बात, डबल विदेशियों से मुलाकात, क्या कहा? डबल पुरुषार्थ करना है। क्या कहा? होशियार है, हाँ तो हाँ ना तो ना। और क्या कहा? सारे कल्चर को छोड़कर एक विशेषता है, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। तो सभी के लिए काम है ब्राह्मण कल्चर की क्या क्या विशेषता है। कल्चर, संस्कृति, तहजीब, कौन सी चीजें इसमें आती है? दो तीन चीजें तो बता दी, भाषा, कपड़े, रहन सहन। परंतु कल्चर जब कहा जाता है, संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति में कौन कौन सी चीजें हैं, उस पर वो सारी चीजों का आज सब मिलके चिंतन करो। एक फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइमर से मुलाकात, क्या वरदान दिया? एक तो कहा कि ये मौजों का संगठन है, दूसरा उनको वरदान दिया, विशेष वरदान बाप दादा देते हैं, मैं अमर आत्मा हूं, अमर बाप की संतान हूं और अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। तो अमर अमर वर अमृत वेले के बाद इस पर विशेष ध्यान, विशेष अटेंशन, इसका विशेष इसके ऊपर सोचना है। डबल टाइमर्स, फिर दिल्ली वालों से मुलाकात, तीन चीजें। पहला, सभी यहां पर आए, दो पुण्य, एक तो यज्ञ सेवा का पुण्य, यज्ञ सेवा बहुत बड़ी चीज है, इस यज्ञ सेवा से क्या पुण्य मिलता है इसके ऊपर सोचना है। यज्ञ सेवा, हाँ उस पर भी आएंगे, यज्ञ सेवा से क्या पुण्य मिलता है इसके विषय में सोचना है। फिर उसके बाद में दूसरा, भगवान का परिवार, विशेष परिवार, इतने सारे दादी महारथी सब इकट्ठे हुए, ऐसा परिवार तुमको और कहीं मिलेगा? तो इस परिवार की क्या विशेषता है, भगवान के परिवार, प्रभु परिवार की, उस पर लिखना है। और तीसरा कहा, दिल्ली, दिल्ली अड़बड़ गड़बड़ खड़बड़ वो सर सड़बड़ और वो खिटखिट जो भी है, वो उसको क्या करना है, सोने की दिल्ली बनाना है। फिर और एक दूसरी चीज है, इस खजाने को प्राप्त करने की चाबी क्या, विधि क्या क्या है? एक तो बताया सबसे पहला निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा चाबी में बताया तीन बिंदिया, और फिर चौथा वो जो तीन अलग अलग खाते हैं उसका एक 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 एक, एक होगा तीव्र पुरुषार्थ, अगला होगा भाव, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव और बेहद की भावना, एक होगा संतुष्टता। तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें एक बताया तीन बिंदियां, माताओं को कहा चाबी, होशियार है चाबी रखने में संभालने में, तीन बिंदिया अर्थात मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा की संतान, और जो भी अब तक हुआ, जो भी जीवन में हुआ अब उसको उसके प्रति दुख नहीं, जो अतीत है जो पास्ट है उसको फुल स्टॉप, उसको ही कब तक लेके चलोगे ढोकर? और वो जैसे वो भक्ति में शंकर जी पार्वती मरी हुई अपने कंधों पर लेके घूम रहे इधर उधर, वैसे हम भी अपने कंधों पर जो मर गए हैं उनको लेकर घूम रहे, जो मर गई है चीजें बातें उनको लेकर घूम रहे, द पास्ट अभी भी इतना भारी है उसी के साथ जी रहे हैं। Shake off all the past. तीन बिंदिया लगाने की ये विधि है खजाने जमा करने की, निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त रहेंगे वो खजाने स्वतः ही जमा होंगे, जहां पर मैं आएगा अहंकार आएगा वहां खजाने रिक्त होंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। जहां निर्माण भाव है, मान की कोई कामना नहीं है, जो मान के पीछे उनके खजाने स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, तीन बिंदिया और वो सारी जो चीजें, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, बेहद की भावना रखा, निस्वार्थ भावना रखना और पुरुषार्थ में लगे रहना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्व पुरुषार्थ में लगे रहना, तो खजाने सारे स्वतः ही जमा होते जाएंगे। और किससे मुलाकात की? और भी कुछ है? डबल विदेशियों से मुलाकात, फर्स्ट टाइमर से मुलाकात और माताओं से, तो उसमें ही आ गया। याद प्यार ऐसे कैसे? बेफिक्र, चलो बनाओ ऐसे। याद प्यार क्या क्या बोला? शुरुआत से ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, ठीक है, एक ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे चिंता से मुक्त। और एक चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भूल गई, तुम सब कौन हो? मुक्ति दाता हो। कारण तुम्हें कारण शब्द स्वयं से मुक्त करना है और दूसरों को भी कारण शब्दों से मुक्त करना है। दूसरों को कारण शब्द से तब मुक्त कर सकोगे जब स्वयं के अंदर से कारण शब्द मुक्त होगा। हे मुक्ति दाता, आवाज सुनाई नहीं देती, चिल्ला रहे अशांति, वो क्यों लगी हुई है, उसकी क्यों लगेगी? तो मुक्ति दाता के क्या क्या कर्तव्य है, लिबरेटर के क्या क्या कर्तव्य है, हमें उद्धारक है। हम संसार के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा है। हम मुक्तिदाता, लिबरेट करना है उन आत्माओं को। पहले तो स्वयं को, स्वयं के अंदर से कारण शब्द को मुक्त करना है और फिर दूसरों को मुक्त कर सकेंगे। उनको शांति के लिए पुकार रही है, क्यों लगने वाली है, उनकी आवाज सुनो। कितने बड़े काम है, जो बाप का काम वो आपका काम, बाप के साथी हो। बाप का भी रूहानी एक नशा है, कौन सा? ये पॉइंट रह गया है। कौन है मेरे राजा? राजयोगी सो राजा, राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ये दो नशे बाप के नशे है, रूहानी नशा बाप को भी है, तो ये बाप का भी रूहानी नशा। ओम शांति।